ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తథో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భాగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. ప్రభు హిందీ పుస్తక్ నే శ్రీమద్ భాగవతం స్కంద సాత్ అధ్యాయ దో శ్లోక సంఖ్య 37. శ్రీ యమ ఉవాచ. ఓ ప్రసిద్ధ శ్లోక్. అహో అమీషాం వయసాధికానాం విపశ్యతాం లోక విధిం విమోహః యత్రాగతస్తత్ర గతం మనుష్యం స్వయం సధర్మా అపి శోచయన్ శోచ్యత్ పార్థం. స్వయం సధర్మా అపి శోచ్యపార్థం. శ్రీయమ ఉవాచ. అహో అమీషాం వయసాధికానాం విపశ్యతాం లోక విధిం విమోహః యత్రాగతస్తత్ర గతం మనుష్యం స్వయం సధర్మా అపి శోచ్యపార్థం. శ్రీయమ ఉవాచ. అహో అమీషాం వయసాధికానాం విపశ్యతాం లోక విధిం విమోహః యత్రాగతస్తత్ర గతం మనుష్యం. స్వయం సధర్మా అపి శోచ్య పార్థం. శ్రీయమ ఉవాచ. అహో అమీషాం వయసాధికానాం విపశ్యతాం లోక విధిం విమోహః యత్రాగతస్తత్ర గతం మనుష్యం స్వయం సధర్మా అపి శోచ్య పార్థం. శ్రీయమ ఉవాచ. అహో అమీషాం వయసాధికానాం విపశ్యతాం లోక విధిం విమోహః యత్రాగతస్తత్ర గతం మనుష్యం Svayam sadharma api sochdya partham. Shri Yama uvacha. Aho amisham vayasadhikanam. Vipashyatam lokabhidim vimohaha. Yatragatastatragatam manushyam. Svayam sadharma api sochdya partham. Shri Yama uvacha. Aho amisham vayasadhikanam. Vipashyatam lokabhidim vimohaha. Yatragatastatragatam manushyam. Svayam sadharma api sochdya partham. Shri Yama uvacha. Aho amisham vayasadhikanam. Vipashyatam lokabhidim vimohaha. Yatragatastatragatam manushyam. Svayam sadharma api sochdya partham. Mahilaon, mataon, bolna nahi, aur koi bolna hai? Okay, padapataha Shri Yamaha uvacha. Shri Yamaraj ne kaha, aho, oho, oha, oh, amisham, inka, vayasa, umrase, adhikkanam, jinki ayu adhik hai, unka, vipashyatam, pratidin rakhte hue, Shamakre pratidin dekhte hue. Loka vidhim. Prakriti ke niyam ko. Ki har koi marta hai. Har koi marta hai. Ye prakriti ka niyam hai. Vimohaha. Moha. Yatra. Jahan se. Agataha. Aya hua, tatra, vahan, gatam, lota hua, manushyam, shamakare, manushya, swayam, sadharmaha, swabhav mein samman, manne ke liye udyat, मरने के लिए उद्यत अपि यद्यपि सोचन्ति विलाप करते हैं अपार्थम व्यर्थ ही अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद के हिंदी प्रभुपाद के दिया गया अनुवाद और तात्पर्य का हिंदी अनुवाद श्री यमराज ने कहा, ओ, यह कितना आश्चर्यजनक है, ये लोग जो आयु में मुझसे बड़े हैं, उन्हें अच्छी तरह अनुभव है कि सैकड़ों हजारों जीव जन्म लेते और मरते हैं, इस तरह उन्हें समझना चाहिए कि उन्हें भी मरना है, तो भी वे मोहग्रस्त रहते हैं, बद्ध जीव किसी अज्ञात स्थान से आते हैं और मृत्यु के बाद उसी अज्ञात स्थान को लौट जाते हैं इस नियम का कोई अपवाद नहीं मिलता तो यह जानते हुए भी वे व्यर्थ शोक क्यों करते हैं तात्पर्य भगवद गीता 2:28 में भगवान कहते हैं अव्यक्ताधीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्रका परिदेवना। सारे ये तकलीफ है, ये लाया और इस्तेमाल। सारे सृजित जीव प्रारंभ में अप्रकट रहते हैं, बीच में प्रकट होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः प्रकट हो जाते हैं। ओ जानते हुए भी अर्थशोक, अतएव शोक करने की क्या आवश्यकता है? यह मानते हुए कि दार्शनिकों की दो श्रेणियां है, जिनमें से एक वे जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं और दूसरे नहीं करते, इन दोनों ही दशाओं में शोक करने का कोई कारण नहीं है। वैदिक वांग्मय के अनुयायी आत्म के अस्तित्व पर न विश्वास करने वालों को नास्तिक कहते हैं। फिर भी यदि हम तर्क के लिए नास्तिकवाद सिद्धांत को मान ले तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं होता। आत्म के पृथक अस्तित्व के अलावा सृष्टि के पूर्व भौतिक तत्व अव्यक्त रहते हैं, किंतु अव्यक्तता की इस सूक्ष्म दशा से ही व्यक्तता आती है। जिस तरह शून्य से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है, पृथ्वी से अनेक प्रकार की अभिव्यक्तियां होती है। उदाहरणार्थ एक विशाल गगनचुंबी प्रासाद पृथ्वी से प्रकट होता है, इससे ध्वस्त कर देने पर वह पुनः प्रकट हो जाता है और अंततः परमाणुओं के रूप में रह आता है। ऊर्जा के संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु कालक्रम में वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती है, यह अंतर है। तो प्रकट होने या अप्रकट होने पर शोक करने का क्या लाभ है? अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं खोती नहीं, प्रारंभ में तथा अंत में इन दोनों ही अवस्थाओं में सारे तत्व अव्यक्त रहते हैं और इससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। यदि हम भगवद गीता में दिए गए वैदिक निर्णय को स्वीकार करें, अंतवंत इमे देहा, कि ये भौतिक शरीर कालक्रम से विनष्ट हो जाएंगे, नित्यस्योक्तः शरीरिनः, किंतु आत्मनित्य है, जो हमें यह स्मरण रखना होगा कि यह शरीर वस्त्र की भांति है, तो फिर वस्त्र परिवर्तन के लिए शोक कैसा? नित्य आत्म के आगे भौतिक शरीर का वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, यह स्वप्न जैसा है। स्वप्न में हम आकाश में उड़ते या राजा की तरह रथ में आसीन हो सकते हैं, किंतु जगने पर हम अपने को न तो आकाश में उड़ते न रथ पर आसीन पाते हैं। वैदिक ज्ञान भौतिक देह के अनस्तित्व के आधार पर आत्म साक्षात्कार पर बल देता है। अतएव दोनों ही तरह से, चाहे कोई आत्मा के अस्तित्व को मानता हो या न मानता हो, शरीर की क्षति के लिए शोक करना व्यर्थ है। महाभारत में कहा गया है अदर्शनाद इहायतः पुनः चादर्शनम गतः। इस कथन से नास्तिक विज्ञानियों के सिद्धांत का समर्थन होता है कि माता के गर्भ में शिशु के प्राण नहीं होते और वह एक पिंड जैसे रहता है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि शल्य क्रिया द्वारा किसी पदार्थ के पिंड को बाहर निकाल लिया जाए, गर्भपात कराया जाए, तो जीव की हत्या नहीं होती, शिशु का शरीर तो ट्यूमर अर्बुद की भांति होता है और यदि इस ट्यूमर को शल्य क्रिया द्वारा काटकर निकाल लिया जाए और फेंक दिया जाए तो इसमें कोई पाप नहीं होता। यही तर्क राजा तथा रानियों के प्रसंग में भी दिया जा सकता है। राजा का शरीर अव्यक्त स्रोत से व्यक्त हुआ था और अब वह व्यक्त से अव्यक्त अवस्था को प्राप्त हो गया है था। चूंकि व्यक्त था अभिव्यक्ति केवल दो अव्यक्ताओं के मध्य में विद्यमान रहती है तो फिर कोई इस अंतराल में प्रकट हुए शरीर के लिए क्यों रोए। हरे कृष्ण। असुर राज हिरण्यकशिपु प्रसंग। यमराज किसको संबोधन कर रहे हैं? यहां कौन? किसकी पत्नी? हिरण्याक्ष सुयज्ञ। राजा सुयज्ञ मर गया। पहला श्लोक। इसके पहले जब रानियां राजा के मृत शरीर के लिए विलाप कर रही थी तो उनका जोर जोर का विलाप यमलोक तक भी सुनाई पड़ रहा था। अतएव बालक का रूप धारण करके यमराज मृतक के संबंधियों के निकट पहुंचे और उन्हें इस प्रकार से उपदेश दिया। तो भगवद गीता नहीं है यहां। अंतवत्तु इमे देहा नित्यस योक्त शरीरिनः। गीता का उपदेश है। धन्यवाद। न त्वं सोचितुम् अर्हसि, ऐसे शब्दों का प्रयोग इस अध्याय के आरंभ में द्वितीय अध्याय गीता। ओह, राधा रास बिहारी की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, गौर निताई की जय। अशोच्यान अन्वशोचस्त्वाम प्राज्ञा बाधांश भाषसे कथासु न कथासु च नानु सोचन्ति पंडिताः। विद्वान पुरुष शोक नहीं करना चाहिए शरीर के लिए। त्वम सोची तुम्हार हसी कहां गया? 40वें ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। तो ये सभी श्लोक में देह का अनित्यता, आत्मा का शाश्वत का उपदेश कृष्ण भगवान अर्जुन को दिया। उपनिषदों में ये उपनिषदों में भी ये उपदेश है, खास करके नचिकेता कथा। नचिकेता अपने पिता को यमराज यमलोक मृत्यु के बारे में प्रश्न पूछा तो उसके पिता ने बोला यमलोक चले जाओ। वहां जाकर यमराज से पूछने लगा तो यमराज ने बोला 3 वर ले लो, ये प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकता हूं, 3 वर ले लो। तो 3रे वर में वापस ये प्रश्न पूछा कि मृत्यु के बाद क्या है। एक दृष्टि में रहस्य है, राजविद्या राजगुह्यम, क्योंकि हम सब भूल चुके हैं और अभी हम यही हैं, अनित्य शरीर में ही वसे हैं, और आत्मा जो शरीर के अंदर रह रहे हैं उसका गति अनिश्चित है, अनिश्चित है। हम कहते हैं स्वर्ग लोक चले गया, कैलाशवासी सबके घर में, भारत में विधान था, माता पिता दादा दादी नाना नानी सबके फोटो रखते थे और नाम जन्म के दिनांक मृत्यु के दिनांक के साथ साथ में कैलाशवासी स्वर्गवासी वैकुंठवासी गोलोकवासी कहां गया कोई निश्चित रूप से कह नहीं सकते। ये भी एक बात है, ये भी एक बात है, विश्वास है। हमारा विश्वास है कि वेद हमारे माता है और माता बता सकते हैं पिता कौन है, माता बता सकते हैं पिता कौन है, और कोई बता नहीं सकते। अन्यथा नास्तिक लोग किसके लिए जी रहे हैं, प्रगति हो रहा है, फ्लाईओवर बना रहे हैं, बहुतल भवन बना रहे हैं, पहले यहां 6 माला बनाया, अभी 50 माला बना रहे हैं, प्रगति हो रहा है किसके लिए। जिस प्रकार से मनुष्य कीट की तरह रह सकते हैं या चूहे के तरह रह सकते हैं, ये प्रगति है। आगे पीछे चलना मुश्किल है महानगर में, ऐसे महानगर आगे पीछे जाना किसके लिए है, जीवन शरीर में रखने के लिए है, और अंत में शरीर का नाश निश्चित है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, ध्रुव, ये ध्रुव शब्द हिंदी में प्रयोग करते थे, अभी चले गया, हा? क्या बोलते हैं उसके स्थान में, ध्रुव के स्थान में क्या बोलते हैं, निश्चित उर्दू शब्द का प्रयोग होते हैं आजकल। हमारा जन्म के साथ साथ ही मृत्यु निश्चित है। मानव जीवन किसके लिए महिमापूर्ण है, आधुनिक समाज में कोई शिक्षण नहीं है किसके लिए मानव शरीर जरूरी है, इसलिए लोग सोचते हैं कि कुछ भी कर सकते हैं, और पाप और पुण्य कर्म सिद्धांत, कर्म सिद्धांत, कर्म सिद्धांत के अनुसार हमारे हर एक प्रवृत्ति का कुछ फल, खास करके क्या बोलते हैं, स्वार्थ, स्वार्थी प्रवृत्ति, अपना शारीरिक सुख के लिए जो जो कार्य में हम प्रवृत्त है उसका कुछ फल होते हैं। इसलिए वैदिक पद्धति थे कि हरेक वस्तु यज्ञ में अर्पण करना, और गीता में उसका वर्णन भी है, त्रयीमाम सोम पाप पुट पापा, जो वेद का अनुयायी है, चाई शब्द का अर्थ है, अलग अलग निष्कर्ष होते हैं, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद का गिनती ने, एक और निष्कर्ष है कि तीन प्रकार के मंत्र है वेद में, त्रयी। हमारा एक गुरु भाई है त्रयी दास, आपने उनको मिला कभी? नहीं, यूएसए के है लेकिन इटली देश में रहते हैं, हिंदुस्तान में बहुत कम आते हैं। प्रभुपाद ने ये नाम दिया त्रयी, त्रयी माम सोम पाप फुट पापा। जो वेद का अनुयायी है यज्ञ करते हैं और यज्ञ में सोमरस निकालते हैं और पीते हैं। त्रयी माम सोम पाप फुट पापा यज्ञ इष्टवा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते। तो वेद का दिया गया पद्धति यही है कि यज्ञ करना जरूरी है। कृष्ण बलराम सांदीपनी के आश्रम में चले गया अवंतीपुर। अवंतीपुर आजकल उज्जैन। उज्जैन शब्द कहां से आया? उद्यान, प्राचीन नाम है अवंती। सांदीपनी ऋषि कहां के थे? उज्जैन के थे? नहीं, कहां के थे? हाँ, अवंती के थे। महाराज कहां के थे? हरे कृष्ण। हाँ, नहीं, अवंतीपुर में रहते थे। भागवत कथा क्या है? काशी, काशी के थे। श्रीमद् भागवत में लिखा है सांदीपनी काशी के थे, वस गया अवंती। वसुदेव और देवकी कृष्ण बलराम वेदाध्यायन के लिए भेजा। जो ओ गुरुकुल के नेताजी है, गुरुकुल जीवन ऐसे है कि वन के निकट निवास, वन और गांव के सीमा क्षेत्र में गुरुकुल होना चाहिए ताकि विद्यार्थी जाकर लकड़ी लेके आ सकते हैं यज्ञ के लिए। यज्ञ और रसोई, दो काम। आजकल हम लोग भी लकड़ी से पकाना वापस चालू किया क्योंकि ये गैस पाइपलाइन से सस्ता है। सब आश्चर्य की बात है, कितना साल पहले ही, 18 साल पहले ही मैं गंगोत्री गए थे और हम लोग उत्तर काशी में एक रात उतरा और उत्तर काशी गंगा के तट पर है, लेकिन मैंने उसी वक्त देखा कि कोई ग्रामीण व्यक्ति गैस बाटल अपने कंधे पर रख के पहाड़ चढ़ रहे थे। यही परिस्थिति 18 साल पहले। कृष्ण और सुदामा चले गया लकड़ी लेने के लिए और वृष्टि के मौसम अचानक भारी बारिश चालू हुआ और दोनों फंस गया वन में। प्रसिद्ध कथा। यज्ञ इष्टवा, यज्ञ के लिए लकड़ी चाहिए, नहीं तो यज्ञ नहीं कर सकते हैं। और सब गुरुकुल बालक, गुरुजी गृहस्थ गुरुजी अग्निहोत्री, आजकल की अग्निहोत्री ये मजाक है। जो बीड़ी या सिगरेट फूकते हैं तो मजाक में हम बोलते अग्निहोत्री, क्योंकि अग्नि का जरूरत है वहां। तो अग्निहोत्री ब्राह्मण सांदीपनी जैसे ब्राह्मण यज्ञ इष्टवा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते। प्रार्थना प्रार्थयन्ते बहुवचनम, स्वर्ग स्वर्गवासी बनना है, कैलाशवासी नहीं स्वर्गवासी। इंद्र स्वर्ग, इंद्रलोकम सुरेंद्र लोकम, त्रयी माम सोम पाप पुट पापा यज्ञायर इष्टवा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यम आसाद्य सुरेंद्र लोकम. पुण्य प्राप्त करके इंद्रलोक पहुंचते हैं. इंद्रलोक में क्या है, ऐसे बैठना नहीं, वास्तव में वो क्या बोलते हैं, ऐसे निषेध है इसमें. भक्ति रसामृत सिंधु, अंग्रेजी नहीं बोलना. ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद. विदेश में अच्छा है, हिंदुस्तान में क्यों बोलना है, लेकिन हम सब बोलते हैं श्रील, है कि नहीं. समावेत भक्त वृंद की जाए के बदले में ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद. नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु क्यों नहीं बोलना. आदत, आजकल हिंदी नहीं बोलते हैं ना, इंग्लिश, आधा हिंदी आधा अंग्रेजी. वस्तुतः प्रार्थना आसीत संस्कृतेन प्रवचनम क्रियताम. संस्कृतस्य श्रवणस्य अभ्यासः नास्ति, तदर्थम हिंदी भाषायां वदामि. अन्यथा संस्कृते अपि प्रवचनं दातुं शक्नोमि. तत्र कष्टं नास्ति किन्तु अभ्यासः नास्ति. अभी अभ्यास है अंग्रेजी. हम लोग आया यहां ये प्राचीन विचार के लिए. और हरे कृष्ण. स्वर्गतिम थे पुण्यम आसाद्य सुरेंद्र लोकम. यज्ञ का फल है पुण्य, और पुण्य का फल है स्वर्गवास. और स्वर्गवास में क्या है, स्वर्गवास में क्या है, उर्वशी, मेनका, रंभा, ये स्वर्ग का. तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम. विशाल भोग स्वर्ग में, विशाल भोग क्या है, अप्सरा, अप्सरसा, अप्सरों का संग. वर्षों वर्षों, 10,000 या 20,000 वर्ष तक ऐसे भोग चलते हैं. सुस्वस्थ शरीर, यहां रुग्ण शरीर, एक एक रोज हम नया नया समाचार मिलते हैं. ये भक्त का कैंसर हो गया. प्रभुपाद जी महाराज एक प्रवचन में कहा कि हमारे भक्त लोगों का कैंसर नहीं होते, सब सदाचारी है. ऐसे प्रवचन बहुत सारे प्रवचन का क्या बोलते हैं, श्रुति पुस्तक, उसको खींच लिया यंत्र के द्वारा. अंग्रेजी का शब्द प्रयोग नहीं करना. प्रभुपाद जी का प्रवचन में उन्होंने कहा कि हमारे भक्त सब सदाचारी है, कैंसर जैसे रोग नहीं होते हैं. और आज सुबह ही समाचार मिला कि एक गुरु भाई वृंदावन में कैंसर ग्रस्त हो गया. और एक और विदेश में प्रभुपाद जी का शिष्य जो मूल हिंदुस्तानी, वो कम हिंदुस्तानी प्रभुपाद से दीक्षा लिया विदेशी लोगों के अपेक्षा से, उसका भी कैंसर है. भौतिक संसार का स्वभाव है, लेकिन ये सब बीमारियां जो इस लोक में हम देखते रहते हैं, स्वर्गलोक में नहीं है. विशाल भोग थेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति. लौट आते हैं स्वर्गलोक. अगर जाएगा यज्ञ का विधान पालन करके, पुण्य प्राप्त करके, तभी भी लौट आना है. इसलिए प्रभुपाद जी महाराज और उन्हीं के गुरु महाराज, भौतिक प्रवृत्ति बंद करना, लेकिन बंद करना आसान नहीं है. बंद करना, भौतिक प्रवृत्ति बंद करना भक्त लोगों के लिए मुश्किल है. एक शब्द बनाया, प्रभुपाद जी महाराज, जो हमारे संस्था वर्षों वर्षों पहले ही जब कोई संस्था छोड़ के चले जाते थे तो प्रभुपाद एक शब्द बनाया ब्लूप, आपने सुना होगा कि जब पत्थर पानी में गिरते हैं पानी के अंदर तो ब्लूप ऐसे ध्वनि होते हैं। हम सब ऐसे चैतन्य महाप्रभु के यही प्रार्थना है ना, आई नंद तुनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधो। भौतिक विषम मृत्यु सागर में मैं गिरा हूं, हम सब ब्लूप, हम सब कहां से आया ये भौतिक संसार में, जहां किसी का ये हो वो हो या अगर कुछ भी नहीं हो। कल यही चर्चा चलते थे अनायासेन मरणम, ये शास्त्र में नहीं है मेरे ख्याल से, अगर हो ठीक है हम स्वीकार करेंगे, अगर हो संस्कृत के सुभाषित या मालूम नहीं कहां से उत्पन्न, जैसे ये गर्ग संहिता में हो या न हो, गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरु गुरुदेवो महेश्वर सब लोग यही मंत्र बोलते हैं, श्लोक बोलते हैं, अनायासेन मरणम विना दैन्येन जीवनम, आपने ये सब सुना होगा। आसानी आसान मृत्यु, कष्ट के बिना मृत्यु, कोई कोई अभी एक मर गया ना, कोई महिला जिनकी बलात्कार हो गया 40 साल पहले, ये बॉम्बे का समाचार है, 40 साल पहले ही उसकी बलात्कार हो गया और बेहोश हो गया और जीते रहा बेहोश सब्जी की तरह या पेड़ की तरह वृक्ष की तरह, सोते हुए खाना कहां खाना देते हैं ना ऐसे लोगों को, यही सूखी अवस्था नहीं है। और इतना वर्षों के बाद मरण, दुखालयम अशाश्वतम, भौतिक संसार क्या है, किसके लिए आया, यही प्रश्न है। तो जवाब हमारे आचार्यों का जवाब है भजन, भगवान का भजन। भजन शब्द का अलग अलग व्याख्या है, जो हारमोनियम लेके बैठ जाते हैं भजन करते हैं, यहां दिन भर होते हैं, भजन भी उपासना पूजा। भजन्ति अनन्य मनसो महात्मानस तुमाम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः, जो भगवान के अंतरंग शक्ति का शरणागत होते हैं उनके मन में भगवान का उपासना भगवान का भक्ति अनन्य सर्वदा सभी कालों में चलते हैं। जो योजना बनाते हैं भोगने के लिए भौतिक संसार में, वो ये चैतन्य चरितामृत में है ना, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, जो भुक्ति भौतिक भोग जो चाहते हैं, भुक्ति मुक्ति जो मुक्ति चाहते हैं, निराकारवादी या शून्यवादी, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी कामी भौतिक भोग, भुक्ति और कामी के बीच में क्या अंतर है? सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। अभी यही प्रश्न है कि कृष्ण भक्त कौन है? क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे वेशभूषा धारण करने वाले लोग भी कोई कोई अशांत है, खाली वेश का परिवर्तन पर्याप्त नहीं है कहने का था, लेकिन उसका विपरीत भी सत्य है कि अगर वेश का परिवर्तन नहीं करेंगे तो वो शांति नहीं मिलेंगे। ये भी एक बात है। वैदिक संस्कृति सामाजिक सुख और शांति के लिए है। तभी भी कोई कोई होते रहते हैं जो वैदिक संस्कृति का विरोधी है, और वर्तमान काल में संपूर्ण भूमंडल में वैदिक संस्कृति का विरोध विचार प्रधान है। हमारा काम है वैदिक संस्कृति का विचार समाज में प्रधान बनाना। यही प्रचार का लक्ष्य है, प्रचार का यही हेतु है। ये काम संपूर्ण रूप से सिद्धि प्राप्त करना हम नहीं देख सकते एक दृष्टि से, क्योंकि संपूर्ण परिवर्तन होना चाहिए। एक दृष्टि में वैदिक काल में ही, हम वैदिक काल क्या कहते हैं, महाभारत का काल, रामायण का काल, उसी वक्त भी लोग थे समाज में जो वैदिक संस्कृति का पालन नहीं करते थे। तभी भी समाज के नायक लोग वैदिक संस्कृति का पालन करते थे। इसलिए भारत में अभी भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्णाश्रम धर्म, अंग्रेजों ने वर्णाश्रम धर्म का खंडन करने के लिए उसका खूब प्रचार किया कि ये जाति व्यवस्था, जन्म जाति व्यवस्था भ्रष्ट पूर्ण व्यवस्था है। ये आरोप है। किसका आरोप है? पाश्चात्य, खास करके उसी काल अंग्रेज राज के काल के अंग्रेज नायकों। हमारा ईसाई धर्म पालन करने वाला समाज जाति, जन्म जाति हिंदुस्तान के व्यवस्था से श्रेष्ठ है। ये प्रचार बहुत किया। अभी ईसाई धर्म वहां लगभग नाम मात्र रहा, सारे चर्च बिकाऊ में है। आधुनिक चर्च है, अंग्रेजी शब्द का प्रयोग नहीं, हिंदी शब्द का प्रयोग, सुरपान के दुकान जो पब बोलते हैं। इंग्लैंड देश में लोगों का संग्रह जो पहले चर्च में होते थे अभी पब में होते हैं। उसी काल में, अंग्रेज राज के काल में, वो सब मांसाहारी और शराब पीने वाले लोग थे ही। भारत में कोई पीते थे, खास करके राजा, लेकिन उद्योग नहीं था। उद्योग बोल सकते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी उद्योगशाला नहीं था, बिक्री के लिए व्यापार नहीं था, जैसे अभी हो गया व्यापार, बहुत बड़ा व्यापार है शराब का व्यापार। राजा भारत में कत्ल खाना और ये शराब का व्यापार और सिगरेट, वो भी क्या बोलते हैं, चिरूट हिंदी शब्द है, अभी कोई नहीं, चिरूट आकर बोलेंगे तो कोई समझ नहीं, काका जैसे लोग समझ सकते। शब्द का प्रयोग चिरूट का बिल्कुल बंद हो गया। बीडी हिंदी शब्द है, बीडी और चिरूट का कारखाना नहीं था, हाथ से बनाते थे जो पीते थे हाथ से। लेकिन अभी कारखाना चालू हो गया तो व्यापार को बढ़ाने के लिए लोकप्रिय बनाया और विज्ञापन अभी विज्ञापन को समाप्त किया या विज्ञापन के साथ साथ में कैंसर ग्रस्त लोगों को प्रदर्शन का उसका कैंसर का रोग दिखाना पड़ता है। समझ लिया कि ये हानि, अगर वास्तव में समझ लिया क्यों नहीं बंद किया, अभी तक बंद नहीं किया कारखाना, शराब बनाने का कारखाना। इसलिए मैं यही कहता हूं कि ये वैदिक संस्कृति का विचार समाज के नायक के विचार होना चाहिए, फिर समाज में परिवर्तन होगा। तब तक हमारा काम कष्टप्रद रहेगा। लोगों का परिवर्तन व्यक्तिगत रूप से हो रहा है, व्यापक रूप से नहीं हो रहा है। था व्यापक रूप से इस देश में वैदिक संस्कृति मानने वाला राजा लोग थे। प्रभुपाद जी महाराज ये विचार प्रकट किया, वैदिक राज होना चाहिए। लेकिन हम आधुनिक राजनीति में प्रवेश नहीं करेंगे, ये भी प्रभुपाद जी महाराज का विचार थे। यमराज का कथन के संबंध में क्या है ये सब, पर ये राजा का मृत्यु का प्रसंग है और उसी काल में सब राजा वैदिक मत का पालन करने वाला, वैदिक संस्कृति का पालन करने वाले थे। कोई कह सकते हैं हिरण्यकशिपु भी ऐसे थे, बलि महाराज भी प्रहलाद के पुत्र, प्रहलाद का पुत्र असुर थे, भले वो बड़ा भक्त थे और उसका पुत्र बड़ा बलिदान बोलते हैं ना, आत्मनिवेदन, सब कुछ भगवान को समर्पण किया। ऐसे दृष्टांत वैदिक राजा लोग या असुर राजा, तो यही काल कब होगा जब फिर से ऐसे राज का स्थापना होगा, ये प्रश्न है। प्रचार हमारा प्रवृत्ति है, प्रचार का अर्थ है कि एक दिन होगा, आशा रखते हैं, हम आशा रखते हैं। लेकिन सब समाज विपरीत दिशा में वेग से चलते हैं, द्रुत गति किसकी ओर, अधर्म की ओर, वैदिक संस्कृति के विपरीत विचार की ओर। कैसे रोकेंगे? भगीरथी कर्म बोलते हैं ना, भगीरथ गंगा का प्रवाह रोक लिया। जब तक उनके पूर्वजों का क्या कहते हैं उधार, जब तक उनके पूर्वजों का उधार, उसने शपथ लिया कि मैं पूर्वजों का उधार गंगा जल से करूंगा। ये संस्था का लक्ष्य है पूरा दुनिया को वैदिक बनाना, ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। यही विचार स्वीकार करना पहले कि आत्मा शरीर में है, आत्मा सनातन है, मानव जीवन का कोई हेतु है, केवल खाना पीना सोना नहीं है जैसे आजकल के विचारधारक सोचते हैं। आजकल क्या सिखा रहे हैं, सब इंजीनियर और डॉक्टर बनना है और वहां आत्मा के बारे में शून्य, जरा सभी है ना, जरा सभी नहीं है। तुम कौन हो, तुम कैसे आया, कहां जा रहे हैं, बस नौकरी में लग जाओ, बंगलो बनाओ, खाओ और मर जाओ, कुत्ता और बिल्ली की तरह यही परिस्थिति है। और उसके पीछे करोड़ों के असंख्य कोटि रुपया का खर्चा हो रहा है, यही विचार सिद्ध करने के लिए कि वास्तव में हम पशु तुल्य ही है और पशु की तरह ही जीना है। और हम लोग भगवान का प्रशंसा, भगवान का संदेश पहुंचाने के लिए उसके अपेक्षा से 1% खर्चा नहीं हो, 1% भी नहीं हो रहा है कि नहीं? भले ही इस्कान संस्था का कितना 200-500 करोड़ रुपये का धंधा है, पूरा 100 या 150 केंद्र है, और ये नया नया जो बन रहे हैं महाविद्यालय विश्वविद्यालय के अपेक्षा से है कि नहीं? राजहंस प्रभु, सत्य है कि नहीं? आप उसी क्षेत्र में है जहां कोटि 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 असंख्य कितना नया नया रोज एक नया कॉलेज महाविद्यालय महाविद्यालय महा अविद्यालय हम कहते हैं, लेकिन हम अल्पसंख्यक, हम अल्पसंख्यक है, हम अस्पृश्य है, अस्पृश्य बोलते हैं ना, निम्न के निम्न, आधुनिक विचार के दृष्टि में मूर्ख लोग भगवान को पूछते हैं, मूर्ख लोग गीता का प्रचार कर रहे हैं, मूर्ख लोग पैंट शर्ट नहीं पहनते, ओ क्षमा करें, मूर्ख लोग धोती पहनते हैं, क्यों? यही परिस्थिति है और इसको परिवर्तन करना भगीरथी भगीरथी कार्य है। हरे कृष्ण, कोई प्रश्न है? माइक आ रहे हैं, हम भी आधुनिक वस्तु का शरणागत।
हरे कृष्णा,
इस दृष्टि से
ये जो बताया ना शरीर के बारे में शोक नहीं करना चाहिए, तो हम देखें कि इतने साल हम सुन रहे हैं हर एक चीज कि आत्मा शाश्वत है, शरीर नश्वर है, और शरीर मरने के बाद शोक नहीं करना चाहिए, फिर भी हमारे कोई फैमिली में या कोई ऐसा कोई शरीर छोड़ता है तो ऑटोमेटिक शोक आ जाता है, उससे कैसे कब तक मतलब ऐसा मुक्त होगा आदमी जो शोक नहीं करना चाहिए? हाँ। सुनते जानते सब कुछ होते हुए फिर भी आदमी शोक करता है।
जय अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर, करुणा करुणा दाया, करुणा विलाप, क्या पर्यायवाची क्या है? विलाप दाया, दायक भावना, लेकिन इसके विषय में जय अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर, अच्छा बहुत सारे दाया प्रदान किया, एक काले कोटा गेला वैष्णव ठाकुर कहां चले गया, तो उनके लिए भी ऐसे ही शोक नहीं, विलाप, शोक और विलाप एक ही चीज है। हमारा पूरा जीवन उसमें से ही ये विलाप जो एक क्षण में या कभी कभी स्मरण होते हैं, पूरा जीवन नहीं बनना चाहिए। शोक तो करेंगे ना, कोई पागल हो जाते हैं, आपने देखा छाती पीते हैं, चिल्लाते हैं, और कोई लोग ये शोक रोज उसका अभ्यास हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। शोक स्वाभाविक है, वास्तव में मन मन में दुख आते हैं, बुद्धि से मन को परास्त करना, कि ये बुद्धि से ही समझना चाहिए कि शोक एक क्षण के लिए है, लेकिन मन का काम है, बट वास्तव में मृत्यु अगर नहीं हो, देह का विनाश है, आत्मा का विनाश नहीं है, और देह थोड़ा दिन के लिए प्रकट होते हैं, तो फिर बुद्धि से ये समझना चाहिए और फिर धीर बनना चाहिए. धीर बनने का अर्थ है कि ये शोक भावना नहीं रहते हैं. जो गया वो गया, उसके लिए रोते नहीं रहना. जैसे ये रानी रो रही थी, रोने से तो राजा वापस आने वाला नहीं थे. नहीं, राजा का आत्मा चले गया, यही स्वाभाविक है. और ये भौतिक संसार अस्वाभाविक है. आया लक्ष्य बनाना है आत्मा का मुक्ति. और चैतन्य महाप्रभु का विचार में भगवत प्रेम दोनों आसान नहीं है. तभी भी बुद्धि के अनुसार अगर यही विचार मन में दृढ़ हो जाते हैं कि हमारा वास्तविक काम शोक नहीं है, हमारा वास्तविक काम है प्रवृत्ति में रहना है. जिस प्रकार से पुण्य मिलेंगे और मोक्ष मिलेंगे या प्रेम मिलेंगे, तो फिर ये शोक अपने आप दूर हो जाएगा.
हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद. पूर्ण हिंदीमय भागवतम प्रवचन आपका. पूर्ण हिंदीमय भागवतम प्रवचन
प्रयत्न कर रहा हूं. इंग्लिश नहीं बोलना. इंग्लिश आधा अंग्रेजी आधा हिंदी नहीं बोलना. जो आजकल सब लोग लगते हैं लोकप्रिय हो गया, आधा हिंदी बोलो आधा अंग्रेजी बोलो.
आपने बहुत अच्छी बात बताई कि इस्कॉन का बहुत बड़ा लक्ष्य है कि वैदिक परंपरा वैदिक रीति रिवाज को पुनर्स्थापना करना है. इस्कॉन का बहुत बड़ा लक्ष्य है, तो ये बहुत अच्छी बात है. तो इस्कॉन ये कहां तक इसका मतलब लक्ष्य पूरा हो रहा है?
सामान्य लोगों का भावना जब भक्ति भावित हो जाएगा, जब गीता का संदेश कि मन मना भव मत भक्तो और चतुर्वर्ण्य माया शिष्टम गुण कर्म विभागशः, फिर बाद में समाधम तप सोचम शांति राज, बहुत सारे उपदेश है. ये सब उपदेश का पालन करना सामान्य हमारा प्रवृत्ति है. हमारा लक्ष्य है कि यही गीता का शिक्षण लोगों के हाथ में अगर पुस्तक आएगा तो होएगा. अभी यही परीक्षा चालू किया, अलग अलग प्रकार के परीक्षा. अच्छा, वाद विवाद यहां है कि आर्थिक लोभ रखना है कि नहीं. कोई कोई हमारे संस्था के केंद्र आर्थिक लोभ भी रख रहे हैं कि आगे गीता का स्पर्धा विजेता बन जाएगा तो कुछ धन प्राप्त होंगे. उसमें प्रभुपाद जी महाराज निषेध किया. हरिशौरी प्रभु जो प्रभुपाद जी महाराज का सचिव थे, प्रभुपाद महाराज ने गीता स्पर्धा में अगर कोई आर्थिक क्या बोलते हैं पुरस्कार पारितोषक, तो यही झूठ क्रीडा है. हरिशौरी प्रभु प्रभुपाद जी के समक्ष यही सुना है. इसलिए धन देने के बदले में गीता कोई दूसरे पुस्तक पारितोषक के रूप में दे सकते. मेरा विचार ऐसे 10,000 रुपया 20,000 रुपया 1,00,000 रुपया नहीं देना चाहिए, पैसा नहीं देना चाहिए. प्रभुपाद का मत अगर हम स्वीकार करना हो तो, लेकिन चल रहा है, मुझे मालूम है चलते हैं. क्योंकि अभी एक पत्र भी आया, ऑस्ट्रेलिया से आया एक पत्र कि हम विश्व गीता स्पर्धा चला रहे हैं और हम इतना धन का राशि पारितोषक के रूप में रख रहे हैं। एक काल में हरिशोरी ऑस्ट्रेलिया का जीबीसी प्रतिनिधि थे। सामान्य जनता, क्योंकि ये राजनीतिक क्षेत्र बड़ा, क्या कहते हैं, बड़ा हम अशुद्ध अशुद्ध शब्द, मतदान होते हैं और उसका बहुत प्रशंसा है और हम लोग भी जाके मतदान देते हैं, देना ही पड़ते हैं, समाज में रह रहे हैं, समाज देखेंगे कि हम भी जा रहे हैं, मायापुर में खास जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद महाराज ये मतदान का विधान का खंडन किया, उसमें कोई संकोच नहीं है। अच्छा, राजा जन्म परंपरा था, लेकिन केवल जन्म नहीं था, जन्म तो था। कुल धर्मश्च शाश्वतः, अर्जुन कृष्ण को ऐसे शब्द का प्रयोग किया। कुल शब्द का पारिवारिक परंपरा, और दिल्ली के बाजू में ही गुड़गांव, गुड़गांव गुरु ग्राम द्रोणाचार्य का निवास स्थान, दिल्ली के निकट जो हस्तिनापुर थे, और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य बुला के वसाया सब पांडवों और कौरवों को वैदिक मंत्र और धनुर्वेद युद्ध कला सिखाने के लिए। दोनों गुरु ग्राम, तो राजा लोग कहने का तात्पर्य यही है कि वैदिक शास्त्र और वैदिक पद्धति, वैदिक मत बाल्यकाल से सीखते थे। फिर राजा, कोई कोई श्रीमद् भागवत में वंश और वंशानुचरित, न केवल श्रीमद् भागवत, सभी पुराणों का लक्षण है ना, पंच लक्षण दश लक्षण, तो एक है वंश, राजाओं का वर्णन उनके कुल आगे और पीछे, और वंशानुचरित उनका कहानियां। अच्छा, कोई कोई वेना राजा जैसे, वेना अकेला नहीं था, वेना सबसे क्रूर दुष्ट राजा, लेकिन और भी अयोग्य लोग थे जो राजा जन्म से नहीं बना, छोड़ दिया, उनका भाई राजा बन गया, उनका कुछ ना कुछ दूसरे व्यवस्था होते थे। राजा ही होना चाहिए और ऐसे व्यक्ति होना चाहिए जो बाल्यकाल में वैदिक शैक्षणिक पद्धति में अभ्यास किया, न केवल जन्म। हाँ प्रभु,
प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी ने इस श्लोक का सारांश में बताया है कि ये देह एक स्वप्न जैसे है, वो सच नहीं है, इसके बारे में आप थोड़ा विवरण करके बताएंगे।
क्योंकि हम सब एक दिन देह त्यागेगा, और त्यागने के बाद सनातन काल के अपेक्षा से ये 50-100 वर्षों का जीवन कुछ नहीं जैसे लगेगा। लेकिन अभी आत्मा, ये पंच महाभूत और तीन सूक्ष्म भूत से ढके हुए हैं, जिस प्रकार से यही स्मरण पूर्ण रूप से नहीं हुआ, लेकिन एक दिन होगा, उस दिन का नाम है जीवन मुक्ति। अच्छा, इसी शरीर में हो सकते हैं, इसी शरीर में हो सकते हैं जीवन मुक्ति, लेकिन दुर्लभ है ना, हम कहते हैं दुर्लभ है। हम मानते हैं, कोई कोई लोग जीवन मुक्त है, मानते हैं। अभी हम बुद्धि के अनुसार दिया गया भगवान का उपदेश का पालन करना ये हमारा काम है। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वक ददामी बुद्धि योगम, मैं दूंगा बुद्धि आपको जिस प्रकार से आप बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तवचार्जुन, हम दोनों बहुत सारे जन्म बीत चुके हैं, थानी जन्मानी उन सभी जन्म अहम वेद मैं जानता हूं, कृष्ण अर्जुन को कहा न त्वम वेत परंतप, आपका याद नहीं होते हैं, हमारा याद नहीं होते हैं। प्रभुपाद जी महाराज ने अनादि काल से चलते आ रहे हैं जीव विस्मरण किया, और भगवान ने ये भी गीता में मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, स्मृति ज्ञान और विस्मृति मेरे से उत्पन्न होते हैं। अभी विस्मृति का परिस्थिति है, हम कौन है, कहां से आए, कहां जाने वाले हैं, सब भूल चुके हैं, हम डूब रहे हैं भौतिक सागर में, और अपने आप का बचाव के लिए विचार करना ये हमारा काम है। कैसे आया सोचना भी नहीं, हम समझ नहीं सकते। हाँ, एक और प्रश्न है।
हरे कृष्ण गुरु जी, हाँ? वो आप बताए कि जो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर,
हाँ, हाँ, हाँ।
उसके ऊपर वो परम पूज्य गौरवंशा महाराज के एक शिष्य है, वो बताए थे कि जो गुरु ब्रह्मा और गुरु विष्णु और गुरु महेश्वर, तो गुरु साक्षात, उसका अर्थ ये होता है कि वो गुरु साक्षात है, मगर डायरेक्ट बोले तो भगवान नहीं,
गुरु साक्षात परम ब्रह्म लिखा हुआ है,
ऐसा बताया जो
यही प्रशंसा वचन है। एक एक, 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 एक हाँ, हम कहते प्रभुपाद जी भी कहते थे कि मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन बहुत सारे संस्था में और इस्कॉन संस्था में भी कोई कोई लोग सोचते हैं कि अपने गुरु ही भगवान, मुक्ति कौन देते हैं, भगवान मुकुंड मुक्ति प्रदान करने वाला, मोक्षयिष्यामि मैं मोक्ष दूंगा, गुरु बताते हैं ये मोक्ष देने वाले हैं, इसलिए साक्षात हरित्व, साक्षात हरित्वेन, जितना मान भगवान को देते हैं गुरु को देते हैं, ये हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का पद्धति है। साथ साथ में ही वो नहीं है भगवान ये भी सोचना है, कभी कभी भ्रम हो जाते हैं और लोग अपने अपने गुरु को भगवान बनाते हैं, और फिर भगवान का पूजा बन करके गुरु जी का पूजा,
नहीं वो
खास करके महाराष्ट्र में चलते हैं, नासिक के और आगे आप सुना होगा।
नहीं, वो वही बात बताए थे कि गुरु को उनके जैसा पूज्य मानना चाहिए, वो गुरु भगवान नहीं, वो श्लोक में वही प्रभु जी वही बताए थे कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात, गुरु डायरेक्ट परम ब्रह्म नहीं, गुरु साक्षात परम ब्रह्म के तुल्य है, उनको उसी टाइप के पूजा करना चाहिए, ऐसा वो परम ब्रह्म नहीं है, उसका मीनिंग वो बताए थे ऐसे।
हम लोग रोज गुरु पूजा करते हैं, लेकिन जब मैं इस्कॉन में प्रवेश किया रोज गुरु पूजा नहीं थे, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गुरु जी के जन्मदिन में व्यास पूजा बोलते हैं, उसी दिन में ही गुरु जी का पूजा होते थे, साल में एक दिन। मैं क्या बोल सकता हूं, प्रभुपाद महाराज से अनुमति लिया, हमारा एक ज्येष्ठ गुरु भाई जो नहीं रहा इस शरीर में, शरीर त्याग कर चले गया, और रोज चालू हो गया पूरा इस्कॉन में, ठीक है उसमें कुछ गलत भी नहीं है, साक्षात हरित्वेन, और अच्छा कीर्तन भी होते हैं, कीर्तनीय सदा हरि है, लेकिन साथ साथ में यही याद करना चाहिए कि गुरु ही गुरु है, और गुरु विष्णु उपासना पद्म पुराण में ये श्लोक है ना, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णोर आराधनम परम। गुरु पूजा विष्णोर आराधना नहीं है, विष्णुवत, विष्णु जैसे आराधना नाम, हमारे संप्रदाय का शिक्षण है आराधना नाम, सभी आराधनों के पूजों के पद्धति विष्णु पूजा सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णोर आराधनम परम। ओ तस्मात परतर देवी थदीया नाम समझ, उसी श्लोक का यही समर्थन करते हैं कि भगवान के जो है उन्हीं का पूजा भगवान के पूजे से श्रेष्ठ है। हरे कृष्ण हनुमते नमः। लोग ये नहीं जानते हैं, आजकल नारायण नमः लिखते हैं, हनुमान नमः लिखते हैं, हनुमते नमः, नारायणाय नमः।
हरे कृष्णा। तो इस विषय में मैं कुछ एक विशेष, जो अंग्रेजी लोग भारतवर्ष में आए तो उन्होंने पैंट शर्ट देखे गए, सब लोगों को पैंट शर्ट देखे गए। इसके पहले लोग धोती कुर्ता पहनते थे और वो पैंट शर्ट छूटने को तैयार है नहीं, सभी लोग अभी पैंट शर्ट के पीछे लगे हुए हैं। और उन्होंने अंग्रेजी भाषा देकर गए, तो इसके पहले अंग्रेजी इधर था नहीं, अभी अंग्रेजी के ऐसे नशा छाए हुए है, सभी लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, कोई संस्कृत सीखना नहीं चाहता है, कोई हिंदी नहीं, लेकिन सभी लोग अंग्रेजी अंग्रेजी सीखना चाहते हैं।
हिंदी भी एक विकृति है, मैं कहता हूं कथम वयम संस्कृत व्यवहार कर्तुम न शक्नुम, इच्छा नास्ती, तद्वत हिंदी माध्यम व्यवहार कृते इच्छा अल्पो क्षीयते शिथिलायते गच्छति। हम लोग जैसे जैसे आप कह रहे हैं कि रुचि उतर गया, ये अंग्रेजी के लिए रुचि है। इंदिरा गांधी के काल में 20 सूत्रीय कार्यक्रम भारत का उद्धार के लिए, और अभी एक सूत्रीय कार्यक्रम विदेश का अनुकरण जो है वहां यहां होना चाहिए। वाटर वर्ल्ड है वहां वाटर वर्ल्ड होना चाहिए, डिज्नीलैंड है वहां डिज्नीलैंड, मनोरंजन ये वो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी मकान बनाना, वायुयान यात्रा, ये प्रगति है, करोड़ों के रुपये उग्र कर्म, ये सब उग्र कर्म है, ये कैसे रोकेंगे? लेकिन रोकने का आशा रखना है, नहीं तो प्रचार कार्य नहीं कर सकते हैं। प्रचार का अर्थ है लोगों का मन का परिवर्तन, बहुत मुश्किल है। कैसे 40 साल पहले ये धोती नहीं खादी धोती यहां विला पार्ले में 19 रुपया, सब लोग धोती पहनते थे, धोती पहनते नहीं है, 600-700 रुपया हो गया, वो 19 रुपया का धोती 700 रुपया हो गया, कौन पहन सकते हैं ये कीमत में? नहीं, प्रचार विपरीत प्रचार हमारे प्रचार से जोरदार है। और अंग्रेजी भाषा कोई कोई कहते हैं अमेरिका का बल, यूएसए का बल का, इंग्लैंड का भी उतना बल नहीं थे, क्योंकि चलचित्र और दूरदर्शन से अंग्रेजी ज्यादा शिक्षा और आधुनिक शैक्षणिक। चीन में भी अभी लोग अंग्रेजी सीखने के लिए उन्मत्त हो गया, पहले नहीं था, 10 साल पहले नहीं था, अभी लग गया। और यूएसए का जीवन कैसे है? लोग दुखी है, लोग दुखी है। एनीवे ये बहुत दीर्घ टाइम तो खत्म हो गया प्रमुख, समय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।